ओम शांति। हमारे बीच में है हमारे आदरणीय भ्राता राजू भाई जी। इस सभा में भ्राता जी का हम सभी तहे दिल से स्वागत करते हैं। स्वागत है, स्वागत है। और भाई जी की विशेषता है कि जो मुरली हम सबके पास पहुंचती है, आप उसे कंपोज करते हैं, मुरली का सार, प्रश्न उत्तर, वरदान, धारणा आदि आदि। निरंतर ईश्वरीय ज्ञान रत्नों से आप खेलते रहते हैं। आपकी विशेषता बचपन से ही आप बाबा के सानिध्य संपर्क ईश्वरीय ज्ञान में हैं, और लगभग 1972 से आप समर्पित रूप में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सेवारत है। तो आज हम आदरणीय राजू भाई जी से सुनेंगे श्रेष्ठ स्थिति का आधार, पढ़ाई। भाई जी।
ओम शांति। हम सब बाबा के गॉडली स्टूडेंट बच्चे बैठे हैं, सबका पढ़ाई से बहुत प्यार है, और हमारी पढ़ाई है मुरली। मुरली है ना पढ़ाई, और कुछ पढ़ाई नहीं है ना। बाबा ने हम सबको मुरली से ही देवता बना दिया। जो जितना ऊंचा पद प्राप्त करना चाहे, बाबा कहता पढ़ाई एक ही है, लेकिन पढ़ने वाले नंबरवार हो जाते हैं। 80 साल वालों के लिए भी वही पढ़ाई है, तो 1 साल वालों के लिए भी वही पढ़ाई है, अलग भी नहीं है। छोटे बच्चों के लिए भी वही है, युवाओं के लिए भी वही है, बुजुर्गों के लिए भी वही है। तो एक जैसी पढ़ाई, पढ़ाने वाला एक, लेकिन पढ़ने वाले सब नंबरवार बन जाते हैं। क्या ऐसी पढ़ाई की विशेषताएं हैं जो पद में नंबर हो जाते हैं? हम सब जो भी बाबा की मुरली सुनते हैं, बाबा हम सबको 4 ही सब्जेक्ट पढ़ाता है। अधिक लंबा कोर्स नहीं है, कोई अधिक समय 8-10 घंटा बढ़ने की भी जरूरत नहीं है, केवल 1 घंटा पौना घंटे की पढ़ाई है। 4 सब्जेक्ट के अंदर ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, और चारों सब्जेक्ट को हम पढ़ते हुए उसके पीछे का उद्देश्य, लक्ष्य यही है कि हम अपनी स्थिति श्रेष्ठ बनाएं, हमारी स्थिति अच्छे से अच्छी संगम ऊपर बने, क्योंकि कलयुग के अंदर परिस्थितियां अनेक आती हैं, और उनको हम अपनी श्रेष्ठ स्थिति के द्वारा ही पार कर सकते हैं। तो आप सभी अपनी स्थिति को थोड़ा सा चेक करना, क्योंकि कई बार बाबा ने कहा है जब अंतिम परीक्षाएं आती हैं, तो धन, साधन, संबंध, कोई भी काम नहीं आते, हमारी स्थिति ही हमें पार करती है। और जो भी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, चाहे योग की तपस्या करते हैं, विशेष क्लासेस सुनते हैं, विशेष सेवाएं करते हैं, उन सब के पीछे भी हमारा एक ही लक्ष्य है कि हमारी स्थिति अच्छी रहे। स्थिति ही हमारी प्रॉपर्टी है, और स्थिति श्रेष्ठ रहे। पहले श्रेष्ठ स्थिति कहा किसको जाता, भाई इसकी स्थिति बहुत अच्छी है, बहुत श्रेष्ठ है, ऊंची है, जो कभी भी छोटी छोटी बातों में जल्दी अधैर्य नहीं होते, डिस्टर्ब नहीं होते, कोई बात सुन करके बहुत जल्दी उत्तेजित नहीं होते, जिनकी स्थिति शांतवत है, धैर्यवत है, गंभीर है, अंतर्मुखी है, एक रस है, अचल अडोल है, उनकी स्थिति को हम कहते हैं ये अच्छी श्रेष्ठ स्थिति है। इन्होंने अब बहुत अच्छी अपनी स्थिति पर ध्यान दिया है। जहां संगठन होते हैं, जहां सेवाएं होती हैं, जहां विस्तार होते हैं, वहां पर बातें तो अनेक होती ही हैं। लेकिन उन सब बातों को देखते हुए, परिस्थितियों को समझते हुए वो व्यक्ति अपनी स्थिति को बिगड़ने नहीं देता। हम सब अभी इस बार ये बहुत दृढ़ता का संकल्प करके जाएं कि कुछ भी हो जाए, कितनी भी विकट परिस्थितियां आ जाएं, लेकिन हम अपनी स्थिति को हिलने नहीं देंगे। बहुत धैर्यता के साथ उसका सामना करेंगे और बहुत सहज रीति से उसको पार कर लेंगे, क्योंकि बाबा ने हमको ऐसी पढ़ाई है। सबसे पहले बाबा ने हम सबको ज्ञान की सब्जेक्ट में तीन विशेष बातों का ध्यान खिंचवाया है। अगर किसी ने बाबा के ज्ञान को यथार्थ रीति से समझा है और उसको अपने जीवन में उतारा है, तो उसकी तीन निशानियां बहुत स्पष्ट दिखाई देंगी। एक, ज्ञानी तो आत्मा हर दृश्य को साक्षी दृष्टा होकर के देखेगी। समझ है, ज्ञान है कि इस नाटक के अंदर जो भी दृश्य, जो भी सीन आ रहे हैं, उसके पीछे बहुत कुछ परमात्म योजनाएं हैं, उसके पीछे बहुत कुछ कल्याण समाया हुआ है। इसलिए कोई भी दृश्य को देख करके क्यों, क्या, कैसे प्रश्नों में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे, उलझेंगे नहीं, साक्षी होकर के देखेंगे और हर दृश्य को देखते हुए बहुत हर्षित चित रहेंगे, मुझेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं। तो ज्ञानी तो आत्मा, जिसके पास ज्ञान है, समझ है, जिसने अपने इस फाउंडेशन को मजबूत किया है, कभी भी हिलता नहीं है, कुछ भी हो जाए। तो सबसे पहले साक्षी दृष्टा स्थिति कहाँ तक बनी है। अगर ज्ञान को हमने समझा है कि हर आत्मा का अपना पार्ट है, ड्रामा के हर सीन में कुछ रहस्य और राज भरे हुए हैं, ड्रामा बहुत युक्तियुक्त कल्याणकारी बना हुआ है, इसका डायरेक्टर, इसका हीरो एक्टर, प्रिंसिपल एक्टर स्वयं परमात्मा है, इसलिए उसके ड्रामा के बीच में कोई नुक्स निकाल ही नहीं सकता। भले समय पर समय विकट परिस्थितियां आती हैं, ऐसी वैश्विक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं जो लोग बहुत चिंतित हैं, बहुत प्रकार की चिंताएं हैं दुनिया के अंदर, लेकिन बाबा के ज्ञानी तो आत्मा बच्चे उस दृश्य में चिंता नहीं करते। सेफ्टी अवश्य करते हैं, लेकिन अपनी स्थिति को साक्षी दृष्टा स्थिति बना लेते हैं। दूसरी एक निशानी है, जो ज्ञानी तो आत्माएं हैं, जिन्होंने पढ़ाई को यथार्थ समझा है, जिन्होंने ज्ञान को जीवन में उतारा है, वो कभी भी किसी भी प्रकार के बंधन में अपने को नहीं बांधेंगी। जो ज्ञान कहता है, समझ ये है कि अब सबके हिसाब किताब चुकतु होने का समय है, हर आत्मा को अपना हिसाब पूरा करके वापस घर चलना है। पुराने हिसाब किताब को या तो हम योग बल से चुकतू कर सकते हैं या फिर भोगना के द्वारा चुकतू कर सकते हैं, लेकिन ज्ञानी आत्मा कहीं नए बंधन को बनने नहीं देगी, क्रिएट नहीं करने देगी। बंधन कैसे बनते हैं वो तो आप सब जानते ही हैं। आज हर एक आत्मा एक दूसरे के बंधन में बनती जा रही है। सबसे बड़ा बंधन मन का बंधन, संस्कारों का बंधन, संबंधों का बंधन, आज साधनों का बंधन, व्यक्तियों का बंधन, बहुत सारे बंधनों में आत्माएं बंधी हुई हैं। लेकिन परमात्मा जब ज्ञान देते हैं, समझ देते हैं कि आप एक आत्मा हैं, आप आत्मा मालिक हैं, इस शरीर से अलग हैं, इसके बंधन से पहले मुक्त हो जाओ। फिर जो मन आपको बंधन में बांधता है, मन के राजा बनो, मन जीत बनो, मन भी आपको अपने बंधन में न बांध सके, क्योंकि मन तभी बंधन में बांधता है जब कहीं विशेष आकर्षण होती है, कोई बहुत अच्छा लगता है, अच्छी चीज लगती है, व्यक्ति अच्छा लगता है, स्वभाव अच्छा लगता है। यदि हम किसी भी आत्मा पर प्रभावित हो जाते हैं तो एक नया बंधन क्रिएट हो जाता है, या हम किसी से बिल्कुल नफरत कर लेते हैं, वैर भावना हो जाती है, दुश्मनी हो जाती है, वो व्यक्ति मुझे अच्छा ही नहीं लगता है, तो वहां पर भी वो बंधन बनना शुरू हो जाता है। इसलिए अगर बाबा ने हमें ज्ञान दिया है तो ज्ञानी तो आत्मा कहीं भी किसी भी बंधन में बंधेगी नहीं। आप सब अपने बंधनों को भी चेक करना, बंधन में बंधी हुई आत्माएं, बाबा कहता है मोटे मोटे बंधनों को तो सहज काट देते हैं, लेकिन सोने के बंधन, सोने की रस्सियां बहुत सूक्ष्म बांधी हुई हैं। और जब हम योग में बैठते हैं तो जहां बंधन होता है मन पहले उधर ही जाता है, खींचता है, बंधन खींचता अपनी तरफ। तो हम बहुत एकांत में बैठ करके अपने सूक्ष्म बंधनों को चेक करें और फिर ज्ञान योग की कैंची से उसको काट दें, हल्के हो जाए। योग के लिए सबसे आवश्यक है हल्कापन। अगर हल्के नहीं है, बंधन है, बंधे हुए हैं, योग नहीं लगेगा, कितनी मेहनत करो। इसलिए बाबा ने हम सबको कहा है कि हल्का और खुशी, ये दो चीजें ऐसी हैं जो आपको सहज इस संसार से डिटैच कर देंगे, उड़ा ले जाएंगे। ज्ञानी तो आत्मा की तीसरी एक निशानी है उपराम। साक्षी दृष्टा है, निर्बंधन है और उपराम है। अब वर्तमान समय परिस्थितियां ऐसी आ रही हैं जो व्यक्ति को वैराग्य दिलाएंगी और वैराग्य के साथ साथ वो उपराम होते जाएंगे, कहीं भी बुद्धि नहीं जाएगी। उपराम का एक बहुत अच्छा अर्थ बताते हैं, ऊपर जहाँ राम रहता है उधर रहना, ऊपर की स्थिति में, ऊंची स्थिति में रहना, उपराम रहना, जिसको बाबा ने परसों की अव्यक्त मुरली में जो हम सब ने कल सुनी सवेरे सवेरे उसमें कही, बच्चे अपनी टॉप की स्थिति में, ऊंची स्थिति में स्थित हो जाओ। जो उपराम रहते हैं, डिटैच रहते हैं, वो ही ऊंची स्थिति में स्थित हो सकते हैं। तो ज्ञानी तो आत्माएं उपराम स्थिति में रहती हैं, अंदर का दिल का बेहद का वैराग्य, हद का नहीं है, मसानी वैराग्य नहीं, आज आया कल खत्म हो गया, अंदर से लगता है कि ये दुनिया तो गई की गई, खत्म होनी ही है, इसमें कहीं भी हमारा कोई भी रग न हो, कोई भी हिसाब किताब न हो, ऐसा आंतरिक वैराग्य सबके बीच में है, साथ हैं, कर्म कर रहे हैं, संबंध निभा रहे हैं, लेकिन बुद्धि से न्यारे हैं, उपराम हैं, कहीं भी बुद्धि लटकी हुई नहीं है। तो अगर हमने इस पढ़ाई को यथार्थ रीति से जीवन में धारण किया है तो ज्ञानी तो आत्माएं उपराम हैं, साक्षी हैं और साथ साथ बंधन मुक्त हैं, स्वतंत्र है, कहीं भी फंसी हुई नहीं है। फिर योग, क्योंकि हम सब जानते हैं कि योग ही सभी समस्याओं का समाधान है, और बाबा ने हम सबको इतना सहज योग सिखाया है, राजयोग, सहज योग, स्वतः योग, जो आत्मा एक सेकंड में शरीर से डिटैच हो जाए, न्यारी हो जाए। हम सब एक ही अभ्यास करें, योगी जीवन के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, हम अपने अकाल तख्त पर भ्रकुटी के बीच में चमकता हुआ सितारा हूं, इस अनुभव को बढ़ाएं। अकाल तख्त पर बैठते ही आपका योग परमात्मा से लग जाएगा, क्योंकि आत्मा निराकार है, ज्योति बिंदु है, जब इस शरीर के भान से अलग होती है तो अपने आप मन बुद्धि बाबा की तरफ खिंच जाता है। तो योग के लिए सबसे जरूरी है अपने अकाल तख्त की स्मृति। सबको अभ्यास करना है अकाल मूरत मय आत्मा, जिसको काल नहीं खा सकता, वही आत्माएं इस संसार में निर्भय रह सकती हैं जो अकाल मूरत स्थिति में रहती हैं। हम सबको बाबा ने पहले दिन ही पाठ पढ़ा दिया कि आप अजर अमर अविनाशी एक चैतन्य आत्मा हो और इस भ्रकुटी आसन पर निवास करती हो। अब इस अभ्यास को जितना हम बढ़ाएंगे इसे तीन फायदे हो जाएंगे, क्योंकि योगी हैं, स्वतः योगी सहज योगी हैं, सबसे पहले आत्मा कर्म इंद्रिय जीत बन जाएगी। आज जितने गलत काम पाप कर्म हो रहे हैं उसका एक कारण है कर्म इंद्रियों की अधीनता। जब आत्मा अपने आत्मिक स्वरूप में स्वराज्याधिकारी स्थिति में स्थित होती है तो मन बुद्धि संस्कार और ये पांचों इंद्रियां आंख नाक मुख कान हाथ ये सब हमारे अपने कंट्रोल में आ जाते हैं। तो योगी आत्मा स्वराज्य अधिकारी राजा बन जाती है, कर्म इंद्रिय जीत बन जाती है। और कर्म इंद्रिय जीत बनने के कारण उससे कोई भी कर्म नहीं होते, पाप कर्म नहीं होते, इसलिए कहते हैं ये आत्मा विक्रमा जीत बन गई, विक्रमों पर जीत हो जाती है। अब कोई भी नया विकर्म पाप कर्म उस आत्मा से नहीं हो सकता अगर योगी है तो। अगर योगी और भोगी साथ साथ चल रहा है तो कभी पाप करेगा कभी पुण्य करेगा। इसलिए राजयोगी आत्माएं जो कर्म इंद्रिय जीत हैं वो विक्रमा जीत बन जाती हैं, प्रकृति जीत बन जाती है और वही कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करती है। कर्मातीत स्थिति में हम भले कहते हैं शरीर छोड़ने के बाद हम उस स्थिति को प्राप्त करेंगे, लेकिन परमात्मा हम सबको कहते हैं, बाबा हम सबको ये बात सिखाते हैं, बच्चे कर्म करते हुए कर्म बंधनों में न बंधना, कर्म से अतीत होकर के कर्म करना, उसके फल की इच्छा न रखना, माना वो कर्मातीत स्थिति का अनुभव है। हम सब उस स्थिति को साकार में अनुभव करें। बाबा हमसे जो सेवाएं करा रहा है जो कर्म करा रहा है इन कर्म इंद्रियों से करें, करावन हार बाबा आपने मुझसे करा लिया, शुक्रिया आपका। कोई बंधन नहीं, कोई उसके फल की इच्छा नहीं, कर्म किया और न्यारे हो गए, वो कर्म श्रेष्ठ कर्म हो जाएगा। अगर कोई भी कर्म हम कर रहे हैं और ये आता है मेरा मान नाम शान कुछ होना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए हम इतनी सेवाएं करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो योगी के लिए कहावत है, योगी वो है जो निंदा स्तुति मान अपमान जय पराजय दुख सुख सब में समान रहता है। योगी वो है जो स्थित प्रज्ञ है, स्थिति उसकी नीचे ऊपर नहीं होती। अगर नीचे ऊपर स्थिति हो रही है तो योग क्या कर रहा है। सर्वशक्तिवान सर्वसमर्थ सर्वज्ञ बाबा के साथ हमारा कनेक्शन, वो हमारे साथ और अधिकार के रूप में हम कहते हो मेरा बाबा, फिर भी कोई छोटी मोटी बातों के पीछे स्थिति बिगड़ जाए, डगमग हो जाए, मूड खराब हो जाए, इसने मुझे पूछा नहीं, इसने मुझे सम्मान नहीं दिया, या मेरा रिस्पेक्ट नहीं किया गया, क्या है योगी है विचार करना। योगी वो है जो सब बातों में समा रहता है, कभी भी डगमग नहीं होता। इसलिए योगी अगर है, पढ़ाई को हमने यथार्थ समझा है, तो स्थिति बहुत ऊंचे से ऊंची बन जाएगी, किसको कोई बात का असर नहीं पड़ता, कोई बात किसको परवाह नहीं है। और फिर अगर दिव्य गुणों की धारणा, तीसरी सब्जेक्ट जो दैवी गुण है, के जीवन में प्रैक्टिकल दिखाई देने लगेंगे, अनुभव होने लगेंगे कि सचमुच ये योगी इसने योग के साथ ज्ञान और योग को धारण करके धारणा स्वरूप आत्मा बन गई। मुख्य चार गुण उसके जीवन में स्पष्ट दिखाई देने लगेंगे। सबसे पहला बाबा कहता है उसके चेहरे से, उसके हाव भाव से, उसकी एक्टिविटी से, उसकी दृष्टि और वृत्ति से पवित्रता की किरणें निकलेंगी। पवित्र आत्मा का ओरा आभा मंडल बड़ा शुद्ध और पवित्र बनता जाएगा। अगर मैंने दैवी गुणों में इस पवित्रता की सब्जेक्ट पर ध्यान दिया है कि मेरे मन वचन कर्म बिल्कुल शुद्ध और पवित्र हो जाएं, तो पवित्रता का जो प्रवाह है वो लोगों को बहुत अनुभव होगा। और इस कलयुग के अंदर जब सारी सृष्टि पतित और विकारी है, किसी न किसी विकार के अधीन है, ऐसे समय पर अगर हम बाबा के बच्चे पवित्रता की देवी, पवित्रता के देव बन जाते हैं, मन वचन कर्म बहुत शुद्ध है, पवित्र है, स्वच्छ है, कोई की भी बातें, कोई की भी गंदगी, कोई के भी अवगुण हम नोट नहीं करते, बहुत अच्छी दिव्य गुणों की धारणा मानी जाएगी। अगर इस पढ़ाई को यथार्थ समझा है तो पवित्रता, सत्यता, नम्रता और मधुरता, ये चार गुण उसके प्रैक्टिकल जीवन के अंदर स्पष्ट दिखाई देने लगेंगे। जो वाणी के अंदर भी कटु वचन निकलते हैं, ईर्ष्या के कारण, जोश के कारण, अपने को समझदार समझने के कारण, अभिमान के कारण, मैं बुद्धिमान हूं, मैं समझदार हूं, जो ऐसा थोड़ा सा भी अभिमान रखता है उसे क्या होता है, फट से उसके बोल में कड़वाहट आ जाती है। इसलिए बाबा ने हम सबको कहा है, आप बच्चे नम्रचित बनो। निर्माण का कार्य करते हुए जितना हम निर्माण कार्य के निमित्त बने हुए हैं, उतना हमारी स्थिति नम्रचित निर्माण बन जाए, ये बैलेंस हो। और नम्रचित की निशानी बोल में मधुरता अपने आप आ जाएगी। सत्यता ऐसे प्रकट होगी कि इसकी वाणी में भी सत्यता है, जो कथनी है वही करनी है, वैसा ही इसका जीवन है। अगर अंदर एक है बाहर दूसरे हैं, माना हम सच्चे नहीं हैं। और बाबा बच्चों की सत्यता पर ही फिदा होता है, कहता है सच्चे दिल पर साहेब राजी। जो बच्चे सच्चे हैं, भोले हैं, जरा भी उनके अंदर छल कपट नहीं है, उनके बड़े बड़े काम ऐसे सहज हो जाते हैं, कोई मेहनत नहीं करनी, ऐसे लगता है सब कुछ हो गया। तो आप हम सबको इस बात को अंडरलाइन करना है कि बाबा का ये जो दिया हुआ गुण है सत्यता का, उसके हम अवतार बन जाएं। सत्यता सबसे बड़ी क्या है, आत्मिक स्वरूप में स्थित रहना ही सत्यता है, देह अभिमान ही असत्य है। क्योंकि सत्यता के दो अर्थ है, सत्य माना अविनाशी, सत्य माना सच्चा। तो सच्चाई है, कथनी करने में समानता है, और साथ साथ देह अभिमान से डिटैच अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित है, स्वयं को पहचानता है, बाबा को पहचानता है, किसी भी देह की तरफ आकर्षित नहीं है, कोई देह अपने बंधन में नहीं बांधती है, वो सच्चा है। ये दैवी गुण जिसके जीवन में आ जाएगा, पवित्रता, सत्यता, नम्रता और मधुरता, ये सब गुण उसके जीवन में स्पष्ट दिखाई देने लगेंगे। चौथी सब्जेक्ट बाबा ने बताई है सेवा। हम सब जानते हैं बाबा ने सेवा के लिए हम सबको निमित्त बनाया है, ब्राह्मण जीवन का श्वास सेवा है। बहुत समय से बाबा कहते आए हैं, बच्चे समय आएगा ये वाणी की सेवा बंद हो जाएगी, और वाणी की सेवा से तुम बच्चे मुझे प्रत्यक्ष नहीं कर पाए, तुम्हें मनसा सेवा से मुझे प्रत्यक्ष करना है। बहुत अच्छा समाचार सुन रहे होंगे आप सभी, मधुबन से आज डायरेक्शन गया है, 30 अप्रैल तक मधुबन में कोई भी आ जा नहीं सकेगा, सब सेवाएं बंद है। सुना है 30 अप्रैल तक मीटिंग कैंसिल, अकाउंट कैंसिल, योग शिविर कैंसिल, सब कैंसिल, गवर्नमेंट के डायरेक्शन 30 अप्रैल तक। हमने मधुबन वालों को शांतिवन वालों को कहा अनुसार बाबा के बच्चों को बहुत अच्छा गोल्डन चांस तपस्या का मिलेगा। सेंटर्स पर भी कोई सेवाएं नहीं, बाहर की कोई भी पब्लिक प्रोग्राम नहीं और मधुबन में भी किसी भी का भी आना जाना नहीं। और 22 तारीख को तो अभी अभी मोदी जी का भाषण आ रहा था, उन्होंने कहा कि 22 मार्च को पूरे भारत में जनता कर्फ्यू, जनता कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगी 7 बजे से रात को 9 बजे तक, सुबह 7 बजे से रात को 9 बजे तक सब अपने अपने घरों में रहेंगे, एक भी बाहर नहीं निकलेगा संडे को। अभी अभी समाचार सुन रहे थे, क्योंकि बहुत बड़ी वो विश्व संकट की घड़ी वो घोषित कर रहे हैं। कोई दवाई नहीं है, कोई इलाज नहीं है, सिर्फ दो चीजें बहुत अच्छी कही है अभी अभी मोदी जी ने, एक संकल्प में एक दृढ़ता लाओ, दृढ़ संकल्प करो कि मुझे बीमार नहीं पड़ना है। और किसी को बीमार होने नहीं देना है, उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। और दूसरा कहा है संयम, संयम से चलो, संयम को बरतो। कोई बड़े संगठन में नहीं जाना है, आपस में बातचीत में नजदीक नहीं आना है, कोई थोड़ा बहुत कोई बीमार है तो उसको थोड़ा अपने आप को कमरे में कैद करके बंद करके रखना है। तो ऐसे बहुत सी बातें उन्होंने अभी अभी सारे पूरे भारतवासियों से हाथ जोड़ के कहा है कि सब हमको सहयोग दो, इस संकट का हमें सबको मिलके सामना करना है। तो 22 तारीख को ऐसा कर्फ्यू लगाया है, जनता कर्फ्यू है, कोई बाहर नहीं निकले। और शाम को एक और बात कही है जो बाबा कई बार कहते हैं ना, उसने कहा जो देश की सेवा करने वाले उनको लिए 5 बजे शाम को सब अपने दरवाजे पर खड़े होकर के, उसने तो कहा कोई साइरन बजे और पूरे देश में जो हमारे समाज की सेवा के लिए निमित्त है उनको हम दुआएं दें, आशीर्वाद दें 5 मिनट खड़े होकर के। तो ये हम सब सेवाधारी बच्चे बाबा के बहुत अच्छा चांस मिलेगा आज से ही। सब बैठ जाओ, माताएं क्यों उठ रही, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, क्यों खड़े हो गई, आज के लिए नहीं है, इन्होंने समझा आज के लिए ही है, बैठ जाओ बैठ जाओ, आज नहीं है, संडे 22 तारीख को 5 बजे शाम को, उन्होंने समझा नहीं। तो सेवा क्या है, अब बाबा कहता है समय आ गया है, मनसा को शक्तिशाली बनाओ। मधुबन में यहाँ शांतिवन में हमने योग शुरू कर दिया, अखंड योग। आज 50-60 भाई बहने ये ट्रेनिंग सेंटर में सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक अखंड योग कर रहे हैं, शुरू कर दिया आज से, और 30 अप्रैल तक चलेगा। हर एक को कम से कम 1 घंटा लगातार बैठना, उठना नहीं बीच में। 9 बजे बैठेगा तो 10 बजे उठे, 10 बजे बैठे तो 11 बजे उठे, ऐसे करके कंटिन्यू योग चलता रहे, अखंड भट्टी चले। और उसके लिए लक्ष्य भी दिए हैं 3, मैं आपको बता देता हूँ क्या लक्ष्य दिए हैं। एक तो 20-20 मिनट का एक ड्रिल करो संगठित रूप में, जहां भी बैठो, भले संगठन में बैठने की मना है, अपने कमरों में बैठो, बाबा के कमरे में अलग अलग बैठो, लेकिन 3 लक्ष्य से सभी तपस्या करो। अगर मान लो आज 10 लाख ब्राह्मण बाबा के बच्चे, पवित्र और योगी बच्चे एक संकल्प में बैठ जाएं कि इस प्रकृति का कल्याण हो, प्रकृति नई दुनिया बना दे, तो क्या होगा, इसके वाइब्रेशन प्रकृति सुन लेगी। तो सभी के लिए 3 संकल्प दिए हैं 1 घंटे के लिए, 20-20 मिनट के लिए। जो बाबा ने 2 टॉप की स्थिति बताई, याद होंगी आपको, सुनिए कल की मुरली। बच्चे शांति की शक्ति का सकाश देने के लिए टॉप की स्थिति परमधाम में बाबा के साथ आके बैठ जाओ, बहुत ऊंची स्थिति है। बाबा के साथ बैठ करके मास्टर ज्ञान सूर्य बन करके ऊपर से पवित्रता की किरणें, शांति की किरणें, शक्ति की किरणें फैलाओ, एक मनसा सेवा ये बताई। दूसरा बाबा ने कहा संगम की टॉप स्टेज, ऊंची स्टेज पर मास्टर रचयिता बन करके, मास्टर विश्व कल्याणकारी बन करके, ऊंची स्थिति पर स्थित होकर के बहुत शुभ भावनाओं के वाइब्रेशन फैलाओ फरिश्ता बन करके। तीसरा बाबा ने कहा जैसे कल्प वृक्ष के जड़ों में बैठी हुई मैं आत्मा तपस्या में बैठी हूँ, अनादि स्वरूप बीज रूप में स्थित होकर के पूरे वृक्ष को शक्ति दो, सकाश दो, लाइट दो। सब आत्माएं जो टाल टालियां पत्ते पूरे वृक्ष को शक्तियों का पानी मिले, शक्ति मिले, ये सेवा अगर हम 20-20 मिनट मनसा की करेंगे हमारी स्थिति भी अच्छी बन जाएगी और पूरे विश्व का कल्याण भी होगा। और बाबा जो चाहता है अंतिम सेवा के लिए हम सब तैयार हो जाएं, है तैयार सभी, सोचना। अब यहाँ से जाने के बाद अपने सेंटर्स पर, क्योंकि बाहर की सेवाएं करने की अभी छुट्टी है, सबको तपस्या करनी है। और ऐसी सब तपस्या करो जो बाबा चाहता है मेरे बच्चों का साक्षात्कार दूर दूर बैठी हुई आत्माओं का होने लगे, क्योंकि प्रत्यक्षता का आधार साक्षात्कार ही है। जब हम उस स्थिति में स्थित होकर के तपस्वी मूर्त बन करके बैठ जाएंगे तो अपने आप इस फरिश्ते रूप का साक्षात्कार लोगों को होगा और ये सेवा सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि आत्माएं महसूस करेंगी कि शांति देवा हमारे रक्षक ये कहीं से हमें सकास दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं, अब इस सेवा की आवश्यकता है। तो इसलिए चौथी सब्जेक्ट में हम सब पास हो जाएं, और इसके लिए एक स्थान पर बैठे हुए भी बहुत अच्छे पवित्र वाइब्रेशन चारों तरफ फैलाएं। सिर्फ समाचार नहीं, बार बार सुनो देखो, कई लोगों का बहुत ध्यान सारा दिन समाचार देखते सुनते हैं, उनके खोपड़ी में और सारा उभर जाता है, अगर ये हो रहा ये हो रहा ये हो रहा, बाबा कहते इसको नहीं देखो, सुन लिया समझ लिया बस इतना बहुत है, ज्यादा इसका चिंतन वर्णन नहीं करो, अपनी सेफ्टी रखो, अपने आप को ठीक रखो, बाकी सब अच्छे से अच्छा होगा, क्योंकि इस कलयुग को बदलना ही है, सतयुग को आने के लिए सब साधन बनेंगे। इसलिए हम सब बाबा के बच्चे अब समय है मनसा सेवा बेहद में बैठ के करें, अब कोई हद की एरिया नहीं रही, मेरी एरिया तेरी एरिया, सबसे बाबा ने मुक्त किया, इसलिए बेहद में रहना, रहम दिल बनना और दाता स्वरूप स्थिति में बैठना, ये तीन निशानियां सेवाधारी की हैं। सेवाधारी माना बेहद की वृत्ति, सुख देने की भावना, सबको सुख मिले, सब सुखी हों, सब दुखों से मुक्त हो जाएं। अगर सेवा में कोई दुख की फीलिंग आ रही है, कोई डिस्टर्ब हो रहा है, तो उसको सेवा नहीं कहते। इसलिए बाबा ने बेहद की सेवा दी है, जिसमें हम सब बेहद में रह करके सुख दें सुख लें, बहुत रहम दिल भावना से सब आत्माएं मुक्त हो जाएं, सबको मुक्ति मिले। मुक्तिदाता बाबा हमको कहता हे मारे मेरे मास्टर, मुक्तिदाता बच्चे, सबको मुक्ति का दान दो, वरदान दो, रहम दिल बनो, पुकार सुनो, कितना दुख बढ़ रहा है, कितना दर्द बढ़ रहा है, आप बच्चे उस सुख स्वरूप स्थिति में बैठ करके इनको मुक्तिदाता को मुक्ति का दान दे दो। तो एक रहम दिल की भावना, एक दातापन की भावना, कुछ किसी से कुछ भी मुझे नहीं लेना, बाबा से मुझे सब कुछ मिल गया, बाबा ने हम सबको क्या बनाया, मास्टर बनाया, मालिक बनाया, बालक सो मालिक बनाया, जो बालक बन गए वो मालिक बन गए किसके, बाबा की सब शक्तियों के, सब गुणों के, सब खजानों के मालिक बन गए, तो हम सब बाबा के बालक सो मालिक बच्चे हैं। जो कहते मैं बाबा का बालक, वहां तो उठाओ मालिक हो, अभी मालिक में हाथ उठाओ, पहले तो बनना अपने मालिक, मन के मालिक, कर्मिंद्रियों के मालिक, स्वराज्य के मालिक, और फिर बनना बाबा की सब शक्तियों के मालिक, खजानों के मालिक, जो कुछ बाबा के पास है, बाबा कहता तुम मेरे बच्चे मास्टर हो, अगर वो ज्ञान का सागर है तुम बच्चे मेरे मास्टर ज्ञान सागर हो, मैं शांति का सागर हूँ तो तुम मेरे बच्चे मास्टर शांति के सागर हो, मैं पवित्रता का सागर हूँ तुम बच्चे मास्टर पवित्रता के सागर हो। तो हम सब बाबा के बच्चे मालिक बन करके, मालिक बन करके दूसरों को दान दें, दो, अपने लिए नहीं है, देता देने वाला देवता बन जाओ, लेवता नहीं, कोई मुझे दे तो मैं दूं, कोई सौदेबाजी नहीं है, कोई मुझे मान दे सम्मान दे ये दे तो मैं दूं, बाबा कहता नहीं, मेरे बच्चे किसी से मांगते नहीं लेते नहीं, मेरे समान दाता बन जाते हैं। तो सेवा की सब्जेक्ट में दाता बन करके, रहम दिल बन करके, बेहद में बैठ करके सुख दो सुख लो, और बहुत अच्छी पवित्र मनसा के वाइब्रेशन फैलाओ, क्यों क्या कैसे कि उलझन में नहीं जाना, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ भी नया नहीं होगा, नथिंग न्यू, पुराना ही होगा, जो होगा ड्रामा में नया कुछ होगा क्या, नथिंग न्यू। इसलिए बहुत अच्छी स्थिति बना करके, श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होकर के बाबा की सकास पूरे विश्व को मिले, शांति मिले, शक्ति मिले, पवित्रता के वाइब्रेशन मिले, ऐसी तपस्या करना जा करके। हमने लक्ष्य दिया है कम से कम 8 घंटा भी योग करने का समय है, जब बाहर की सेवा नहीं तो क्या करेंगे, 8 घंटा बैठ के योग करो, 8 घंटा कम से कम तपस्या के रूप में योग हो, और इसके अलावा 8 घंटा मौन में रह करके कर्म योग हो, 16 घंटे का चार्ट बन जाएगा आपका, करके देखना, ठीक है। तो हम सब सेवा करके सेवा की सब्जेक्ट में भी नंबर 1 ले लेंगे, इस यही श्रेष्ठ स्थिति का आधार बनेगा। अब दो बातें और सुनाता हूं। वर्तमान समय के प्रमाण हम सब के पास चार शक्तियों की बहुत जरूरत है। अगर चार शक्तियां नहीं होंगी तो कहीं भी धोखा मिल सकता है। सबसे पहले समय प्रमाण परखने की शक्ति बहुत जरूरी है। परखना, परखने के बाद निर्णय देना, राइट और रॉन्ग को समझना, राइट क्या है रॉन्ग क्या है। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया ने इतनी नेगेटिविटी बढ़ दी है, अगर हमारी बुद्धि साफ स्वच्छ नहीं है तो हम बातों को समझ नहीं सकते, राइट क्या है रॉन्ग क्या है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे बुद्धि की लाइन क्लीन रखो, क्लियर रखो, इसके अंदर कोई डिस्टरबेंस ना हो तो आप फट से परख सकेंगे ये जो समाचार ये जो बात है गलत है, ये मुझे नहीं सुनना है नहीं देखना है। परखने की शक्ति अति आवश्यक है और जिसके पास परखने की शक्ति है वो निर्णय ले सकता है क्या करना है क्या नहीं करना है। और फिर समय आया है कुछ सहन करना पड़ेगा, कुछ समाना पड़ेगा। और साथ साथ बाबा कहता है बच्चे जहां जहां बुद्धि का विस्तार है, जहां बुद्धि आपकी विस्तार में गई हुई है उसको समेट लो। अब समय नहीं है विस्तार में जाने का, न बातों के विस्तार में जाओ न समस्याओं के विस्तार में जाओ, न कहीं व्यस्त जीवन के विस्तार में जाओ, न संबंधों के विस्तार में जाओ। जिसने विस्तार को समेटा है वही इस शरीर से एक सेकेंड में उड़ सकता है निकल सकता है। कुछ भी हो जैसे बाबा ने अपने आप को समेट लिया, विस्तार को समेट लिया और एक सेकेंड में बुलाव हुआ कर्मातीत बन के अव्यक्त वतन में चला गया। हम सब बाबा के बच्चे प्रैक्टिस करें, जहां जहां बुद्धि का विस्तार है, जिधर जिधर हम बहुत फैल चुके हैं विस्तार कर लिया है समेट लो, अब समय नहीं है विस्तार में जाने का। जिसने बुद्धि को समेटा हुआ है वो सहज एकाग्रचित हो जाएगा, एक टिक स्थिति में स्थित हो जाएगा, खुद को और बाबा को देखेगा और सब संसार भूल जाएगा, और नहीं तो बुद्धि विस्तार में भटक जाएगी। इसलिए समेटने की शक्ति, समाने की शक्ति, सहन शक्ति, परखने की और निर्णय करने की शक्ति, ये पांच शक्तियां अभी वर्तमान समय की परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक हैं। और इसके लिए आवश्यक ये है कि हम अपनी बुद्धि को बहुत क्लीन रखें, साफ स्वच्छ रखें। बाबा सर्वशक्तिमान है, वो हमें सब शक्तियां वरदान में दे देगा, लेकिन लेने के लिए हमें क्या करना होगा, बुद्धि को बहुत क्लीन रखना। क्या कौन क्या कर रहा है उसमें मुझे नहीं जाना, किसी की कमी कमजोरियों को इस बुद्धि के बॉक्स में भरना नहीं है, नहीं तो किचड़ा हो जाएगा, गंदगी हो जाएगी, फिर कई वायरस आ जाएंगे। इसलिए हम सबको बाबा कहते हैं अपनी बुद्धि को बहुत साफ रखो, स्वच्छ रखो, पवित्र रखो, अच्छे अच्छे विचार करो, सकारात्मक चिंतन करो, बुद्धि किचड़े का डिब्बा नहीं बने, बस साफ स्वच्छ विचार चले। एक बाबा की मुरली पढ़ो, वरदान पढ़ो, अच्छा साहित्य पढ़ो, अच्छा संग करो, अच्छे अच्छे विचारों में रमण करो, बुद्धि साफ रहेगी, क्लीन रहेगी, जिस शक्ति की जब जरूरत है हाजिर हो जाएगी। अगर ऐसे कहो मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं ये हूँ और अभी जरूरत है सहन करने की और मैं कहूँ वो तो याद ही नहीं रहा सहन करना, हमने सामना कर लिया। समय पर अगर कोई शक्ति साथ नहीं दे रही है तो क्या कहेंगे, मास्टर सर्वशक्तिमान। इसलिए आवश्यक है कि जो शक्तियां जिसके हम मास्टर हैं वो हमारी शक्तियां हमारा कहना माने और समय पर याद आ जाए। शस्त्र हो और समय पर भूल जाए तो योद्धा युद्ध के मैदान में खड़ा है, सब शस्त्र हैं उसके पास, लेकिन कौन सा शस्त्र यहाँ चलाना है वो भूला हुआ है, जीत सकेगा, उसकी हार हो जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे अपने सर्व शक्तियों के शस्त्र को साथ रखो और जब समय आया उस शस्त्र का प्रयोग करो, विजयी हो जाओगे। तीन बातें और सुनाता हूं निश्चय की। अगर सचमुच कोई का बाबा में अटूट निश्चय है, स्वयं में निश्चय है, बाबा में निश्चय है, बाबा की पढ़ाई में निश्चय है, तो उसकी निशानियां है, वो निश्चित विजयी है, उसकी हार नहीं हो सकती। लेकिन अगर विजय में थोड़ा सा भी, निश्चय में थोड़ा भी पता नहीं, मेरे अंदर तो ऐसे ऐसे संस्कार हैं, ये कमियां हैं, ये कमजोरियां हैं, बाबा तो कहता है मैंने तुमको देवता बनाया था, बना दूंगा, लेकिन देवता ही लक्षण तो कोई है ही नहीं, संशय आ गया अपने में, क्या पुरुषार्थ हम करेंगे। अगर भगवान की नजर हमारे ऊपर पड़ी है, उसने चुना है, अपना बच्चा बनाया है, हमने उसको पहचाना है, बाबा कहा है, तो वो हमें बना के छोड़ेगा। इसलिए कभी भी दिल शिकस्त नहीं होना है। बाबा कहता दिल होल नहीं बनना, बड़ी दिल रखो, बने थे, बनेंगे, बने हैं, अगर ये स्मृति रहेगी तो कभी भी निराश नहीं होंगे। तो निश्चय अपने में कि मैं कल्प कल्प का विजयी रतन हूँ, विजय जन्म सिद्ध अधिकार है, माया कितने भी बड़े रूप में आएगी मुझे हरा नहीं सकती, मैं विजयी बन जाऊंगा। तो सबसे पहले निश्चय बुद्धि विजयंती, और निश्चय बुद्धि निश्चिंत, चिंता नहीं, चिंता ताकि कीजिए जो, बोलो, अनहोनी होई। है चिंता क्या? बाबा के बच्चों को कोई चिंता नहीं, चिंता करना भी नहीं, चिंता जैसा मर्ज नहीं, चिंता चिता समान है। इसलिए हम सबको निश्चिंत स्थिति में बाबा ने रहना सिखाया है। ड्रामा के अंदर कभी भी ब्राह्मण आत्माओं का, किसी का भी अकल्याण नहीं हो सकता। इसलिए हम सब बाबा के बच्चे निश्चिंत स्थिति में रहें, और साथ साथ अगर निश्चय पक्का है तो निर्भय स्थिति में रहें। भयभीत होने की क्या जरूरत है? निश्चिंत और निर्भय, जहां भय है वहां भूत लग जाता है, वही सब प्रकार के रोग आ जाते हैं। इसलिए हम सब बाबा के बच्चे इस समय निश्चय बुद्धि बन करके निश्चिंत रहें, निर्भय रहें, और साथ साथ निर्वैर, किसी से वैर विरोध नहीं, किसी से दुश्मनी नहीं, सब अच्छे हैं, सब बाबा के बच्चे निर्दोष हैं। अगर निश्चय अटूट है, निश्चय बुद्धि हम हैं, तो निश्चिंत स्थिति कल्याणकारी ड्रामा है, हर सीन में कल्याण है, हर आत्मा निर्दोष है, किसने क्या किया, क्यों हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ, किसी के चिंतन में जाने की जरूरत नहीं है। तो अभी समय अनुसार हम सब निश्चय को भी परखें कि सचमुच भगवान में मेरा निश्चय है, वो हमें पढ़ा रहा है, उसकी निशानियां हमारे जीवन में है। अगर निशानियां नहीं और किसी को आपको भगवान पढ़ाता तो हंसेंगे। अगर वो निश्चय है कि भगवान हमारा टीचर है, भगवान हमारा साथी है, तो कम से कम उसकी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर वो नशा, वो खुशी, वो उमंग, वो उत्साह, वो निश्चिंत जीवन तो दिखाई देनी चाहिए। हम कहें भगवान हमारा साथी और चिंता लगी हुई हो, टेंशन पड़ा हुआ हो, कौन कहेगा इसको भगवान मिला है? जिसके साथ हजार भुजाओं वाला साथ साथ रहता है, उसको डरने की क्या बात है? डरेंगे क्या? डरना नहीं। इसलिए बाबा कहता है बाबा के साथ कंबाइंड होकर के रहो। चार स्वरूप कंबाइंड है हमारे, और चारों स्वरूप इस समय हमें याद रखने चाहिए। नोट करो, चार स्वरूप कंबाइंड है। सबसे पहला तो ये आत्मा शरीर के साथ कंबाइंड है, इसको भी अलग नहीं कर सकते, अलग करेंगे तो काम नहीं आएगा, साथ साथ हैं। हम अलग अनुभव करते हैं लेकिन इसके बिना तो कुछ नहीं काम होता। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना, उसको ठीक ठाक रखना हर एक के हाथ में है। उसके लिए अपनी परहेज करो, अपनी एक्सरसाइज करो, कुछ व्यायाम करो, प्राणायाम करो, शरीर को स्वस्थ रखना हर एक को सीख लेना चाहिए। ऐसा नहीं दिनचर्या को बिगाड़ करके चलो क्या करूं, ये काम है, ये सेवा है, ये करना पड़ता है, न उसको रेस्ट मिल रही है, न उसको समय पर भोजन मिल रहा है, न व्यायाम हो रहा है, तो कैसे शरीर साथ देगा, कब तक देगा? इसलिए शरीर एक बहुत अच्छा माध्यम है अपनी उन्नति और सेवा के लिए। इसलिए हर एक ब्राह्मण आत्मा को इससे स्वस्थ रखने की जवाबदारी है। खुद स्वस्थ रहो, अपने लिए प्लान करो, कम से कम एक घंटा शरीर को दो, व्यायाम करो, एक्सरसाइज करो, प्राणायाम करो, सहज करो, जो कर सकते हो सहज, शरीर ठीक रहेगा। तो हम सब आत्मा और शरीर कंबाइंड है, इसका अनुभव करें। आत्मा इस शरीर के अंदर बैठी है, इस शरीर से कर्म करा रही है और बीच बीच में से अलग हो जाएं। दूसरा है कंबाइंड स्वरूप मेरे साथ, सर्वशक्तिमान बाबा कंबाइंड है, आप और बाप, मैं और मेरा बाबा, बहुत लाइट रूप में कैसे कंबाइंड रहेगा बाबा। स्थूल शरीर तो उसको है ही नहीं, सूक्ष्म शरीर भी शिव बाबा को नहीं है। जैसे आत्मा निराकार है ऐसे बाबा भी निराकार है। जब हम अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होके बाबा शब्द कहते हैं तो जैसे बाबा इस भ्रकुटी में साथ में कंबाइंड हो जाता है, उसकी याद में कंबाइंड हो जाते हैं, उसकी लाइट के साथ कंबाइंड हो जाते हैं। अगर हमारी बहुत पवित्र शुद्ध विचारधाराएं पवित्रता की लाइट है तो शिव बाबा की लाइट भी परम पवित्र है। कई बार कहता है जोड़ी वो अच्छी लगती है जो समान होती है। अगर एक बहुत मैली है, काली है और दूसरी एकदम गोरी और चमकदार है तो जोड़ी अच्छी नहीं लगती। इसलिए बाबा कहते जो आत्माएं बिल्कुल प्योर शुद्ध हैं वो मेरे साथ कंबाइंड रहती हैं। तो मैं बाबा के साथ कंबाइंड हूँ, इस स्मृति को बढ़ाओ, इससे उसके साथ का अनुभव होगा। और अगर कोई कमी कमजोरी होगी तो साथ से वो सब खत्म हो जाएगी। तीसरा कंबाइंड स्वरूप है मैं ब्राह्मण सो देवता, मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता संगम पर। जितना ये स्मृति बढ़ाओगे ना कि मैं ब्राह्मण हूँ, अभी अभी मैं श्रेष्ठ कर्म के लिए निमित्त हूँ, साकार शरीर धारण किया, इस साकार शरीर से आकारी शरीर में चले गए। दो अर्थ अंतर हैं मानव और फरिश्ते के, दो ही अंतर बाबा सुनाता है। मानव वो है जो देहिमानी है, देह अभिमानी मानव है, और जो देही अभिमानी है वो फरिश्ता है। जितना हम अपने आत्मिक स्वरूप में लाइट के स्वरूप में स्थित रहेंगे वो ड्रेस हमारी तैयार हो जाएगी, फरिश्ता ड्रेस। तो हम सब अपने लाइट की फरिश्ता ड्रेस में इस ब्राह्मण जीवन के साथ कंबाइंड है, क्योंकि इससे हम अलग नहीं हो सकते। ब्राह्मण जीवन में कर्मयोगी बन करके कर्म किया और कर्म से न्यारे होकर के अपने डबल लाइट स्वरूप से फरिश्ते स्वरूप का सेवा करा, साक्षात्कार कराया। तो ये कंबाइंड स्वरूप है। और चौथा कंबाइंड स्वरूप एक स्मृति के लिए है चतुर्भुजो। भविष्य में लक्ष्मी नारायण चतुर्भुज हैं और वर्तमान में नर और नारी के दोनों संस्कार हरेक के अंदर कंबाइंड हैं। ये स्मृति अगर हम पक्की करेंगे तो क्या होगा, कभी भी हम किसी पर निर्भर नहीं होंगे। नहीं तो कहेंगे, भाई कहेंगे ये बहन जी का काम है, ये हमारी माता जी होती तो काम करती, ये भाइयों का थोड़ी काम है, ये रोटी बनाना भोजन बनाना ये तो बहनों का काम है, डिपेंड हो गए। और बहनें सोचें ये तो भाई का काम है, वो नहीं होंगे तो कैसे काम होगा। बाबा कहता तुम्हारे अंदर दोनों संस्कार हैं, किसी जन्म में मेल किसी जन्म में फीमेल बने हो, संस्कार दोनों भरे हुए हैं। इसलिए मैं नर नारी का कंबाइंड रूप चतुर्भुज हूँ, चार भुजा वाला हूँ। स्थूल नहीं चार भुजा है, लेकिन संस्कारों में मेल और फीमेल दोनों संस्कार कंबाइंड है। इसलिए चार कंबाइंड स्वरूप अगर हम सदा साथ रखेंगे, ये पढ़ाई का सार मैं आपको बता रहा हूँ, ये पूरी पढ़ाई जिसने अपने जीवन में ऐसे उतारी है उसकी स्थिति बहुत श्रेष्ठ है, अच्छे से अच्छी है। और अब ये जरूरत है अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा इन परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करना। अगर स्थिति नीचे ऊपर है तो परिस्थितियां हमारी स्थिति को बिगाड़ देंगी। इसलिए स्थिति को अचल अडोल एक रस बहुत परफेक्ट बना करके रखो, श्रेष्ठ बना करके रखो। बातें आती हैं खत्म हो जाती हैं, आज हैं सब ठीक हो जाएंगे। तो हम सब बाबा के विजयी बच्चे अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा क्या करेंगे, परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करेंगे और साथ साथ बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे, क्योंकि श्रेष्ठ स्थिति ही बाबा को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनेगी। स्थिति बिगड़ गई, डिस्टर्ब हो गए, मूड खराब हो गई, खुशी गायब हो गई, चेहरे पर उदासी आ गई, कौन कहेगा इनको भगवान मिला है। इसलिए बाबा कहता है तुम्हारी चलन और चेहरे से मैं प्रत्यक्ष हो जाऊंगा, ऐसे नहीं प्रत्यक्ष होऊंगा। तो हम सब ब्राह्मणों को अपने चलन और चेहरे पर ध्यान देना है। ओम शांति। चलो अभी बाबा की याद में 3 मिनट के लिए सब इस देहभान से डिटैच होके बाबा के साथ कंबाइंड बन करके पूरे विश्व को सकास दो।